Gajanandana, Gajanaranjana. Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallava Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallava Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Shri Shri Guru Gauranga Gandhidhari Jagannath Balabhadra Subhadra Ji Ki Jai Jaya Nitya Paramahansa Prajapati Sada Shri Shrimad Shri Bhaktam Dasami Srila Prabhupada Maharaj Ki Jai Jaya Nitya Paramahansa Prajapati Sada Shri Bhaktam Dasami Shri Shri Thakur Shri Prabhupada Ki Jai नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय श्रीमद भागवत ग्रंथ की जय बिंदादि तुलसी महारानी की जय समस्त भक्तवृंद की जय निताय गौर विमानंदे हरि हरि वो जय दूर नहीं करना चाहिए अभी राम से Nama Shrestha Manumapi Sajiputra Matra Sarupang Rupang Vishagrajang Marupuring Matring Goshtavadim Radha Kunda Agrivaramah Radhika Madhavasang Prapta Yashya Pajukipayang Sigurung Damanato Yasmi Vancha Kalpataru Bhaisakipa Sindhubevacha Paitanang Pavanibho Vaishnavibho Namo Namaha भक्त्या विहिना अपराध वैक्कैकिप्रास कमाल तरंग मध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ने वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावतिब्ब छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते Sāsukhani-vajitāsat-buddhatanana bhāva-pajitur-chirilā-krishto-sārastadhyam Vaitanita-kripyāṅjastat-tadīpaṅ-purānaṅ-tamakhila-prijignāṅ Vesa-sonu-nato-yasmi Bhave-bhave-sā-bhakti-pādhastiva-jāyate Sathā-kuruṣa-devesa-nāta-astana-jata-prabho Nāma-saṅkritanam-jaśya-sara-pāpa-pranāsanam Pranāma-duka-samanastu Tangnamāmi-hari-param Om namo bhagavate vāsudevāya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrittam Narancaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasa Tato Jaya Mudirait Nashta Prayesha Vabresho Nittam Bhagavata Sevayam Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Nashtake Srimad Bhagavatam, Dasam Skanda, Dasam Ajjaya, Shlok Nambar 14 Jatha Kantaka Anga Janto Na Ichchati Tam वेथाम जीव संयाम गतः लिंगे न तथा अविद्धकंटकः यथा कंटक विद्धांगो जंतुर नेच्छति तांग्वेथाम जीव संयम गतो लिंगे न तथा विद्धकंटकः यथा कंटक विद्धांगो जंतुर्नेच्छति तांग्वेथाम जीव संयम गतो लिंगे न तथा विद्धकंटकः यथा कंटक विद्धांगो जंतुर्नेच्छति तांग्वेथाम जीव संयम गतो लिंगे न तथा विद्धकंटकः बोलो यथा जिस प्रकार कंटक अंग वह पुरुष जिसका शरीर कांटे से बिन चुका हो जंतु ऐसे पशु को न नहीं इच्छति चाहता है ताम उस व्यथाम क्रिया को जीव संयम जीव संयम गत हरि बोल। थोड़ा बात बाद में कर लो, टाइम बहुत मिलेगा। जब वह समझ लेता है कि हर एक की दशा एक सी है, लिंगे विशेष प्रकार का शरीर धारण करने से नाम नहीं तथा उसी तरह अविद्ध कंटक जो व्यक्ति कांटे से नहीं बिंधा। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जिसके शरीर में कांटे चुभ चुके हैं वह उनको चेहरों की देखकर उनकी पीड़ा समझ सकता है। जिन्हें कांटे चुभ रहे हो वह अनुभव करते हुए कि वह पीड़ा सबों के लिए एक समान है, वह नहीं चाहता है कि अन्य लोग इस तरफ से कष्ट सहे, किंतु जिसे कभी कांटे गड़े ही नहीं वो इस पीड़ा को नहीं समझ सकता। तात्पर्य कहावत है कि जिसने गरीबी की कष्ट झेला है वह संपत्ति के सुख को भोग सकता है। एक अन्य कहावत भी है, बंधा की बुझवे प्रसव वेदना, बांध किया जाने प्रसव की पीड़ा। वास्तविक अनुभव किए बिना मनुष्य को इस भौतिक जगत में दुख और सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। प्रकृति के नियम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। यदि किसी ने किसी पशु का वध किया है तो वह उसी पशु के द्वारा मारा जाएगा, वह मांस कहलाते हैं। माम अर्थ मुझको तथा स का अर्थ है वह। जिस तरह मैं पशु को खाता हूँ उसी तरह वह पशु मुझको खाने को अवसर पाएगा। इसलिए प्रत्येक राज्य में हत्या करने वालों को फांसी के देने का विधान है। चलो प्रसंग तो आप लोग जानते हैं, हम चाहते ही नहीं है। इनका नारद जी का कृपा, अहेतु की कृपा। साधारणतः अहेतु की कृपा सबके ऊपर बरसाता नहीं है। वैष्णव यद्यपि दयालु है, फिर भी उनका दया में भेद रहता है, स्वतंत्र फराद है। कृपा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर वैष्णव जन चाहे पूरा विश्व को उद्धार हो जाए, इच्छा करने से विश्व को उद्धार हो जाएगा, किसी को हरिनाम करने का आवश्यक नहीं है, क्योंकि भगवान अपना भक्तों को वाक्यों को भी टालते नहीं है। लेकिन वैष्णव जन ऐसा करते नहीं है। यहां पर देखा दिया है, जिसका शरीर में कांटे चुभ चुके हैं वही व्यक्ति कांटे का व्यथा समझ सकता है। तो इनके लिए जी इनका जो नल और कुबेर था, नल कुबेर और मणिग्रीव, इनका विषय मदांध अत्यंत धन संपत्ति होने के नाते इसका गर्व हो चुका था। अच्छा और बुरा विचार कोई जानते नहीं थे। तो इन्होंने जब तक दुख भोग करेगा नहीं तो दुख क्या वस्तु इनको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए नारद जी इनको अभिशाप दिया, ये तुम्हें दरिद्रता प्राप्त हो जाए, जिस प्रकार तुम आचरण करते हो इस आचरण तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुम देवलोक में हो और नांगा होकर के सूर्यध्वनि गंगा गंगा में नहा रहे हो, जो एक भक्त्यंग है। गंगा में पुंडरीक विद्यानिधि चरण नहीं रखते थे, क्योंकि गंगा में पाप चरण रखने से अपराध समझते थे, लेकिन गंगा पानी पी करके विष्णु पूजा अवश्य करते थे। इसलिए संध्या का समय गंगा का दर्शन करने जाते थे, जिससे ये सब चीज उनको देखने के लिए ना मिले। तो ही गंगा में देव कन्या का साथ उलंग होकर के जलक्रिया करना, एक तालाब में करके ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर भी जो सूर्यध्वनि जिसको चरणामृत कहते हैं, जो समस्त अपराध का भी खारण कर सकते हैं, गंगा पानी का इतना महत्व है, अपराधी व्यक्ति भी उसमें नहाए तो उसको अपराध भी नष्ट होता है, सगर पुत्र जो भी है। इसलिए उन्होंने कहा इनका धन का जो गौरव हुआ है, इनका अगर दरिद्र हो जाए तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ये नारद जी विचार कर रहे हैं, दरिद्र एक ऐसा वस्तु है, हे दरिद्र नमस्तिभं सिद्ध अंग तत्प्रसाद पश्चामं जगत सर्व नमा पश्यन्ति कंचन। हे दरिद्र नमस्तिभं, मैं क्लास 9 में पढ़ा था 74, वो दिन चार श्लोक याद है इसका, आज बाकी नहीं है। हे दरिद्र नमस्तिभं, हे दरिद्र मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, क्यों सिद्ध अंग तत्प्रसाद, आपका कृपा से मैं सिद्ध हो चुका हूं। कैसे? पश्चाम हम जगत सर्व, मैं पूरे जगत को देखता हूं, हर किसी के द्वार में जाके भिक्षा मांगना पड़ता है, तो कौन व्यक्ति कैसा उनका दृष्टि मिलता है, कोई प्रेम करता है, कोई गाली देता है, कोई और कुछ बोलता है, कोई एक मुष्टि देता है, कोई पूरा भर के देता है, तो पश्चाम हम जगत सर्व, मैं पूरा जगत को देखता हूं, नमामि पश्चिमी कंचन, लेकिन मुझे कोई नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता है? अरे भिखारी, कितना भिखारी आया गया, अभी तो दूसरा भिखारी होगा ना, इसलिए कहते हैं नमामि पश्चिम कंचन, मुझे कोई नहीं देखता है, लेकिन मैं जगत को देखता हूं। तो दारिद्र अगर किसी को मिल जाए उनको सुधारने का मौका मिलता है, अगर किसी को विषय व्यक्ति का अगर विषय मिल जाए तो उसको सुधारने का मौका कभी नहीं होता है। इसलिए हमें भी सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, अगर हरि भजन करना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे भाई बहुत लोग बहुत सारे परिवार से आए हैं, कोई धनी परिवार से आया, कोई गरीब परिवार से आया, कोई और मध्यवित्त परिवार से आया, ऐसा नहीं है सब करोड़पति के घर से आया है, ऐसा भी नहीं कोई भिखारी के घर से भी आया है, तो अलग अलग व्यक्ति इसको न कैसा जाएगा, हर एक व्यक्ति का अलग अलग चेता से मंदिर में आकर ज्वाइन किया और यहां आकर के विषय का पाचुर्य, इसको क्या है द्वारिकापुरी, कितना आया, कितना खाया, कितना गया, कितना अनलिमिटेड मनी है इसको में। दाढ़ी के पूरी का ऐश्वर्य कभी कम नहीं होता है। कोई आया, कोई खा के जाए, कोई फेंके खाए, कोई लुटवाए, कोई लेके जाए, कुछ भी करे, भगवान उसको फर्क भी नहीं पड़ता है। गौर लीला में महाप्रभु का जब शादी हुआ था तो पान बांट रहा था, तो एक एक करके सबको दिया। ब्राह्मण में लोभी भी होता है, नवद्वीप में लोभी ब्राह्मण भी थे उस समय, तो एक का जाएगा दो दो तीन तीन ले रहा है। महाप्रभु अंतर्यामी सत्य में सब कुछ मालूम पड़ गया, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर किसी को ब्राह्मण को अगर चोरी से पकड़ लिया जाए तो क्या बोलेगा, ये ब्राह्मण चोर है। मतलब ब्राह्मण का अगर अवमान हो तो मेरा अवमान ना होगा। तो उन्होंने क्या बोला, सबको तीन तीन चार चार बोल के पान दे दो। जिसको जितना चाहिए ले जाओ, ये इसको नहीं लेके जाओ, माना नहीं है, लेकिन हजम करने का भी ताकत तो होना चाहिए। ऐसे उन्होंने तो हम क्या बोल रहे थे, हमारे यहां आकर के ऐश्वर्य का प्राचुर्य हो गया। अगर इस ऐश्वर्य में हम डूब गया तो हमारा नलकूप और मणिग्रीव है। यथाकंटक विद्या, दुख वही व्यक्ति दुख को समझ सकता है जिसने दुख भोगा है। और दुख भोगने के बाद अगर सुख मिल गया, सुख में अगर वो व्यक्ति डूब गया, दुख को अगर भूल गया, तो वो उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो यहां आकर के किसी विषय का चिंता नहीं, नो टेंशन। फिर अगर हरिभजन हम ना करें तो हमारा हाल क्या होगा, वही दोबारा दारिद्र्य में जाना पड़ेगा। सुजोग है, सुविधा है, जितना जरूरी है उतना स्वीकार करने के बाद हमारा आत्मा का उन्नति कर, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ही सोचता है हमारा आत्मा का उन्नति कर ले, क्योंकि उनको दुख मालूम है। हम जब संसार में तो हमारे दुख था, यहां आज हम कुछ मिला इसमें अगर हम डूब जाए ये सब चीजों में, कपड़ा लता जूता छाता ये सब में, तो आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यथाखंडों को भी जब उनको मालूम है हम आया किस उद्देश्य से, हमारा उद्देश्य क्या था। जिस दिन हम मंदिर छोड़े थे, हम अपना बोलता हूं, उस दिन हमारी इच्छा था कि हम विषय भोग करेंगे, हरि भजन करेंगे। और उस जिस दिन हम अंदर आया था उस दिन का विचार था, आज तक हम बजाय रहे तो हमारे भगवत धम चला जाता था, ये बीच में भूल जाते हैं। इसे कहते हैं पश्चाम हम जगत शर्मा नमाय पश्चिम कंचलो, एको ही दोषे गुण सन्नी पाते निमन जतिन्द्र ऋतुजो भाषे नुनंग अदृष्ट को भी नापी चलो दारिद्र दोषे गुण राशि नाशे। ये सेकंड चैप्टर में दिया है। एको ही दोषे गुण सन्निभा, चांद पूर्णिमा का चंद्र कितना सुंदर है, शरद पूर्णिमा के ताजमहल देखना चाहिए बोलता है, सबसे अच्छा। एको ही दोषे, चांद में भी एक दोष है, क्या दोष है, कलंक। लेकिन फिर भी चांद का असुंदर तो कोई बोलता है नहीं, चांद में कलंक बोलता है, कितना सुंदर पूर्णिमा का चंद्रमा है। निमज जतिन्द्र ऋतु जो भाषण उन्न दृष्टियों को भी ना पीते दारिद्र दोष है गुण राशि नाशी। चांद में एक ही दोष होने का बावजूद भी चांद को लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन पंडित व्यक्ति अगर दारिद्र हो तो उसको कोई प्रशंसा नहीं करेगा। पंडित व्यक्ति अगर दरिद्रता हो जाए, बहुत बड़ा पंडित है, वर्तमान स्टेज में बोलता हूं, पीछे का नहीं बोलता हूं, पीछे का स्टेज में राजा राजा के समय में जो पंडित लोग का कलर था, अगर भिखारी भी क्यों ना, मूर्ख भी क्यों अपना, किसी प्रकार का संपत्ति क्यों ना हो, फिर भी राजा लोग पंडित को समादर करते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सदैव से पूज्यते राजा। जय श्री श्री गुरु गोरांग गंधारी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की जय। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन अभी नहीं है। अभी अगर आपका पास अर्थ नहीं है तो आपको, अगर पंडित भी हो तो आपको कोई पूजा नहीं करेगा। अगर आपका पास ज्यादा ज्ञान भी नहीं है तो भी आपको भक्त बोलकर कोई पूछेगा भी नहीं। तो आपके पास तो मूर्ख है, कुछ जानता नहीं है, ये क्या कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं है, ये थोड़ी भक्त है। तो आजकल के विचारधारा है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते नहीं। लेकिन ये क्या बोला यहां पर, अगर दरिद्र हो जाए लेकिन पंडित भी हो एको ही दोषे गुण सन्नीपाते निमज्जतिन दरिति जो भवा नुनंगनो दृष्टियों को बिना आपित दरिद्र दोषे गुण राशि एक ही दारिद्र का कारण उसका पांडित्य की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर आपको पीएचडी डॉक्टरेट लेना है तो आपको पैसा चाहिए, आपको अगर ज्ञान है लेकिन डॉक्टरेट लेने के लिए आपको पैसा नहीं है, कोई हेल्प नहीं करेगा। माइकल मधुसूदन दत्त ब्रिटिश का तोसामत करके इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड में जाकर के ऐसा ऐसा पोएम को रचना किया जो ब्रिटिश अथार्थ पर नहीं कर पाया, लेकिन वहां वो एक ही दोस्त था उनका इंडियन, पैसा नहीं था, वहां जाकर उसको भीख मांगना पड़ा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को पैसा देकर इंडिया बुलाया, तो उन्होंने कभी विद्यासागर में विख्यात भारत करके जो भी है। इस प्रकार जो दरिद्रता है व्यक्ति को सत्यानाश कर देता है। तो ये लोग यहां पर क्या दिया नारद जी का, इसको दरिद्र होना बहुत अच्छा है क्योंकि धन का मन से मदस्थित हो गया है, और इसको अगर भिखारी बना दिया जाए तो ये समझ सकता है दरिद्र क्या वस्तु है। तो ये जो आचरण कर रहा है इस आचरण को नारद जी मन में स्वगत विचार है, अभी तक तो प्रकाश नहीं किया, स्वगत करके विचार कर रहे हैं यथा जीव सैन्य, तो ये समझ सकते हैं आज जिस व्यक्ति को भी दुख नहीं मिला वो क्या करेगा। इसी प्रकार ये भक्त का जो गुरुदत्त, गुरुदत्त क्या वस्तु है, गुरुदत्त दो बहता है, एक कृपा सिद्ध एक नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध व्यक्ति जब इस जगत में गुरु का कार्यों के लिए आते हैं तो उनका क्या होता है, वो सौम में समान करके चला जाता है। लेकिन साधन सिद्ध व कृपा सिद्ध व्यक्ति जब आते हैं उनको भौतिक जगत का दुख को अनुभव रहता है, विरोध भागवत पढ़ोगे तो मिल जाएगा। वहां पर लिखा गया है जो अप्राकृत कोई व्यक्ति मुक्त होकर जब भगवत धाम जाता है, भगवान का कृपा से जो जगत में आकर प्रचार करते हैं तो उनका पीछे का जन्म का सब कुछ अनुभव रहता है, ये हमने ये था, हमने ऐसा करके ऐसा भजन करके हम यहां पर आया। तो उन्होंने क्या कहता है कि जगत में जितना सारे जीव है जो दुख भोग रहा है ये भी भजन करके भगवत धाम जाए, ये गुरुदत्त में दुख है। लेकिन जो नित्य सिद्ध है उनको संसार का दुख और सुख का कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ लोग क्या कृष्ण भक्ति हो देते जाता है, लेकिन ये सब विरल है, बहुत कम लोग आते हैं। ये लोग आने के बाद क्या करता है, अपने आप को छिपा लेता है, जगत का दुख देख करके जब जगतवासी इनका कदर नहीं करता है तो अपने आप को छिपा करके संकुचित तो हो जाता है, और क्या करते हैं ग्रंथ लिख के चला जाते हैं, उपदेश देना बंद कर देता है, क्योंकि देखते हैं उपदेश स्वीकार करने वाला कोई स्वीकार करता ही नहीं है। तो जगत काल के उद्देश्य उन्होंने क्या किया, ग्रंथ लिख के चला गया, जो भी शुक्रशाली व्यक्ति होगा ग्रंथ पढ़ के अपना आप कल्याण कर लेगा, उस ग्रंथ में उन्होंने आशीर्वाद दिया जाता है। अब चैतन्य भागवत पढ़ो पूरा चैप्टर का एंड में वृंदावन ठाकुर आशीर्वाद किया है, जो व्यक्ति ये चैप्टर को पढ़ेगा उसे गौर सुंदर का चरण प्राप्त होगा, हर चैप्टर में आशीर्वाद दे दिया है। इसलिए इन्होंने कहा मनुष्य रचित रे ऐच्छिक अंश दैन्य वृंदावन दास मुखी वक्ता श्री चैतन्य, लिखे जवन अगर जवन भी इस ग्रंथ का श्रवण करे वो भी कृष्ण भक्त बन जाएगा, क्यों बनेगा आशीर्वाद। तवे लाठी मारी चार शिरो ऊपरे, लोग समझेगा अहंकार है, भक्ति सिद्धन लोग क्या कहते हैं तुम्हारे ऊपर कृपा है, वैष्णव का चरण धुली अब यहां पर उन्होंने ऐसा करके ले रहा है, हमने देखा लेकिन सही नहीं है। अगर महाभगवत दृष्टि है तो सही है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार हिष्ट देव स्फूर्ति, अगर महाभगवत है तो भाई ठीक है ले लो, क्योंकि सब जीव में कृष्ण दास है, केहो माने केहो ना माने भाई सर दास तो ले सकते हो भाई, महाभगवत दृष्टि है। अगर कनिष्ठ अधिकारी में है तो नहीं लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि व्यक्ति वैष्णव है तो अवैष्णव हमको शिकायत जानना चाहिए ना। शुश्रूष भजन विज्ञ मनन्न मन्य, उनका सेवा करो जो भजन विज्ञ है, जो भजन विज्ञ उसको सेवा क्यों करेंगे, विचार करने से मध्यम अधिकारी होता है, जिसका विचार नहीं उपरिष्ठ अधिकारी है, उत्तम अधिकारी विचार और इसमें परे है सर्वत्र समभाव है, तो विचार संयम जब तक नहीं है तब मध्यम अधिकारी आ ही सकता है। तो मुद्दों मुद्दे कर विचार करता है, जजमेंट करता है क्या सही है क्या रंग है। ये विचार करने की क्षमता आवश्यक है। कनिष्ठ अधिकारी कुछ जानते नहीं है, आगे भी जा सकते नीचे भी जा सकते, कुछ नहीं है। उत्तम अधिकारी कोई विचार है ही नहीं है, सब समदृष्टि है। अगर समदृष्टि है तो लेते रहो, कोई माना नहीं है। अगर समदृष्टि नहीं है तो लेने मत जाओ, ये कल्याण नहीं हो सकता है। जय जवान वैष्णव चिनिया लैया आदर करीब जबे भक्ति महादेवी हमारे हृदय आसने बसीबे तबे। जो जिस प्रकार वैष्णव है उस प्रकार आदर करना चाहिए, और इस प्रकार आदर सत्कार हम नहीं करेंगे तो भक्ति हमारे हृदय में बैठ नहीं सकता है। तो भक्ति को बैठाने के लिए वैष्णव जन्मे जो जिस प्रकार है उसको उसी प्रकार सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ के दिया है रूपाधि तात्पर्य लिखते हैं, बंधा ना जाने प्रसव वेदना, भाव संप्रसन्न था हम लोग का बंध। जो बांध है, जो कोई बच्चा जिसका हुआ ही नहीं है, प्रसव काल में क्या पीड़ा उसको क्या मालूम है। ओ, बच्चा वो तो कुछ नहीं है, ऐसा तो बच्चा आ जाएगा, टेंशन क्यों रहते हो। उनको बच्चा हुआ नहीं तो क्या मालूम पड़ेगा, जिसका बच्चा उसको पूछो जाकर के प्रसव में क्या तकलीफ होता है। उसको दिन पूरा क्या बोलता है, 24 घंटा हा हूं करते रहता है। हम गृहस्थ, हमको तो ज्ञान है, पूरा 24 घंटा चिल्लाते रहता है। तो यहां प्रसव बंधन आ जाने प्रसव है बदना। तो वास्तविक अनुभव किए बिना मनुष्य को इस भौतिक जगत में दुख और सुख की अनुभूति नहीं होता है। जो व्यक्ति भक्ति करता है वही व्यक्ति भक्ति को समझा सकता है, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है वो शास्त्र के द्वारा भक्ति को कितना भी समझा दे लेकिन दूसरा व्यक्ति को उपकार नहीं हो सकता है। तो अनुभव नहीं है, इनके नाम से क्या लक्ष्य हीरा, लक्ष्य हीरा था ना, बेचता था। हरिदास ठाकुर को 3 दिन तक रहा, हरिदास ठाकुर को बिगाड़ नहीं पाया, हरिदास ठाकुर को बिगाड़ के रख दिया। उनका चरित्र को सदन जो बेचा बेचा व्यक्ति को दाग कर दिया। रोज 3 लोग हरिनाम जप करने लगा, क्यों तो हरिदास ठाकुर से पावर था, उन्होंने हरिनाम का जप का महत्व को समझते थे और उस पर उन्हें आचरण करते थे। इतना सुंदर रूप में अपना तो सजावट करके सामने खड़ा हुआ, फिर भी उनका तो ऐसा करके देखा भी नहीं, हम भी इधर तो झांकते रहेंगे क्या हमारा स्वभाव है, क्यों स्वभाव है। तो हमारा उत्पत्ति भौतिक जगत में हुआ है, हमारा जो उत्पत्ति है, जो ये जो मेटेरियल बॉडी है ये भौतिक जगत का है, इसलिए इस बॉडी का आकर्षण दूसरा बॉडी में रहेगा, मैग्नेट ऑटोमेटिकली लोगों को खींचेगा। तो हम जब इस भौतिक जगत का, हमारे पूरा शरीर का संरचना व हमारी उत्पत्ति भी भौतिक जगत में हुआ है, आध्यात्मिक जगत में हमारी उत्पत्ति नहीं हुआ है। अगर आध्यात्मिक जगत में हमारी उत्पत्ति हो जाता तो हम भौतिक जगत में फंसते नहीं थे। हमारा उत्पत्ति भौतिक जगत में होने के नाते भौतिक वस्तु के ऊपर हमारा इतना संसर्ग है, इसलिए हम इधर उधर हाथ घुमाते रहते हैं। स्वाभाविक है, कहां जाएगा। लेकिन जब हम आध्यात्मिक अनुसरण करेंगे विधि और निषेध, धीरे धीरे अजामिल चरित्र बढ़ते ना, अजामिल पंडित क्या फूल उठाने गया, देखा अपना शास्त्र लाया, शास्त्र ने ऐसा कहा ऐसा कहा ऐसा कहा, पूरा शास्त्र को आरोहण कर लिया, फिर भी नहीं रुक पाया अपने आपको, गिर गया होगा। मूर्ख नहीं था अजामिल, देखो पढ़कर भागवत ने दिया हुआ है, पूरा शास्त्र आचरण किया, भाई शास्त्र में ऐसा कहा ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी टपक गया। ये परिस्थिति है, इसलिए हरि भजन करना चाहिए। जितना हम भजन करेंगे, जितना हमारा चीज बल होगा उतना हमें लाभ मिलेगा। नित्यानंद क्या बोला, हमारे किनियाल हो बोलो गौरव हरि, बोलो तो भजन में क्या मेहनत है। अगर हम शास्त्र वाक्यों को स्वीकार करते हैं, एक ही शब्द है, हमारे किनियाल हो बोलो गौरव हरि, आप गौर हरि बोलो मैं आपका हूं, भजन में तकलीफ है। लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है, क्या मालूम हम गौर बोल के नित्य ना आए तो। अगर हमारा दृढ़ विश्वास है गौर बोले नित्यानंद हमारा हेल्प करते, कबे नित्यानंद मोरे कोरी दया छाड़ाई मोरे विषय माया। तो कब नित्यानंद कृपा करके हमारे विषय का माया छोड़ा, लेकिन हम कोई बोलते हैं नित्यानंद बोलते हैं क्या? जब यहाँ पर आर्ज होता है गौर नित्य हरी बोल करके लास्ट में कहीं बोल रहे, पर दिन भर नित्यानंद बोलते हैं, पूरा दिन भर भी नहीं बोलते। तो हमारे उस समय जो बोलना क्या है, तो बाकी क्या आरोलन है, सबने ऐसे कीर्तन करता है, मैं भी ऐसे कीर्तन करूंगा। लेकिन जब हम समझेंगे कि नित्यानंद का नाम लेने से गौर सुंदर मिलता है, जब उसको प्रीति करेंगे तो ऑटोमेटिक गौर सुंदर मिलेगा। दिया मोरे निज चरण छाया नामेर हाथे से दिवे अधिकार। नित्यानंद कृपा बिना हरि नाम नहीं होता है। महाप्रभु का जो प्रेम का भंडार का भंडारी वो द्वैत नित्यानंद है। जब तक हम भक्ति करते नहीं है, जब तक हम खुद भजन नहीं करेंगे, तब तक हमारा भजन का कितना भी हम शिक्षा क्यों ना दे फलप्रसू होगा नहीं, पांडित्य हो जाएगा। लोग हमें बहाव अवश्य देगा, क्या क्लास देके गया, बढ़िया, क्या ज्ञान है भाई, इस प्रसंग समय डूब जाओगे कुछ मिलेगा नहीं। प्रतिष्ठा से आशा सुकुर विष्ठा नापेलो रावण जुझिया राघव। रावण ने सोचा राम को हरा दिया तो जगत मार प्रतिष्ठा हो जाएगा, लेकिन प्रतिष्ठा एक ऐसा वस्तु है, नाचाए ये हो नाचाए तो पिछु पिछु धाए। माधवपुरी गोपीनाथ का खीर चूरी, माधव ने समझा ये सुबेरे लोग समझ गए भगवान इसके लिए खीर चूर, तो पूरा लोग तुम्हारे पीछे लग जाए, भागो। रात को भागा जगन्नाथपुरी, लेकिन वहां जाकर सबको मालूम हो गया माधवपुरी आया है, सब माधवपुरी के पीछे पड़ गया। ये प्रतिष्ठा नाचाए तार पीछे पीछे जाए, वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा। जो वैष्णवी प्रतिष्ठा होता है उसमें निष्ठा करे वैष्णव, खुद हमें वैष्णव बनना है ये विचार रखना चाहिए, हमें वैष्णव बनना है। कैसे बनेंगे? वैष्णव का चरित्र बनने से, वैष्णव का चरित्र पाठ करेगा तो हम वैष्णव बन जाएंगे। वैष्णव का चरित्र सब दिया हुआ है, क्या क्या वैष्णव का जीवन आलोचना करके देखोगे, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। तो जब उनका चरित्र का हम पाठ करेंगे तो उनका चरित्र का पठन का कृपा से उनका जो बल है वो बल हमें संचारित होगा। आप अगर कुछ कर नहीं पाते तो एक ही काम क्या करो, जो महाभगत उनका सामने बैठ के रहो। भक्तिम ठाकुर ने कहा है आप कुछ कर नहीं पाते कोई बात नहीं, जो महाभगत है उनका सामने बैठ के रहो, आपका भजन हो गया। उनका जो क्या बोलता है अलौकिक शक्ति है, उस शक्ति का प्रभाव से आप शुद्ध बन जाओगे, आपको शुद्ध नहीं रह पाओगे, इसी बोलते वहां जाकर बैठ के रहो। ये भक्ति है। तो नारद जी साधारण तो महाभागवत लोग को भी किसी में असूया नहीं करता है, अगर महाभागवत किसी को कुछ करता है उसका मंगल भी हो जाता है। नारद जी का चरित्र हम लोग देख रहे हैं, इतना अशोध आचरण करने के बावजूद भी इनको सर्वोपरि पद दे दिया, सिद्ध लोग नहीं दिया, वैकुंठ नहीं दिया, अयोध्या नहीं दिया, द्वारका नहीं दिया, गोलोक वृंदावन दे दिया। नारद जी का महत्व देखो, इतना सब कोदरीय आचरण करने के बाद भी इसको बोलते महाभागवत, इतना सब नारद जी को जो अपना बैकग्राउंड है उन्हें दुख को समझा। जो दासीपुत्र नारद था, उपवर्हन गंधर्व था, उनको अभिशाप मिला था, उनको ज्ञान है, उसको मालूम है, इसलिए नारद जी के दिया ना, उनको ज्ञान है, उनको मालूम है संसार में दुख क्या वस्तु है, सुख क्या वस्तु है, हरि भजन क्या वस्तु है, सुंदरता क्या है। मैं भी सुंदर था, मैं गंधर्व था, लेकिन गंधर्व रहने के बाद भी हमारा अहंकार हुआ था और अहंकार हमारा पतन हुआ, दासी पुत्र बना। तो नारद जी का ज्ञान है, इसी नारद जी उनको कृपा कर बोले, इसको जब तक ये ज्ञान नहीं होगा ना तब तक ये भी सुधारने वाला नहीं है, मैं तो इसको अभी उद्धार कर सकता हूँ आशीर्वाद दे करके। लेकिन नहीं, इसको उस स्थिति को मालूम होना चाहिए, और उस स्थिति को अगर एक बार इनको मालूम हो जाए तो दोबारा गिरेगा नहीं। इसलिए नारद जी स्थिति को समझते हुए उनको भी विचार कर रहे हैं अभी इसको क्या दंड देना चाहिए। ଏହି ନଳକୁବୀର କ୍ୟା ବନା ଶୀତକଣ୍ଠ ଆର୍ ମଧୁକଣ୍ଠ ବ୍ରଜ କା ଗାୟକ ଗୋପାଳ ଚମ୍ପୁ ମୁଁ ଦେଖ ଓ ବ୍ରଜଲୀଳା କା ବରଣ କରା ଶୀତକଣ୍ଠ ଆର୍ ମଧୁକଣ୍ଠ ନାରଦୀ କା ଶିଷ୍ୟ ଦୁନୁ ଏହି ନଳକୁବର ଆର୍ ମରିଙ୍କିରି ବ୍ରଜମେ ବ୍ରଜବାସୀ ହୋ ଗିଆ ମହାଭାଗବତ ବି ଅଗର କୁଛ ବୋଲତେ ହେଁ ବା କୁଛ କରତେ ହେଁ ତୋ ଉସ ଜୀବାତ୍ମା କା ଅକଲ୍ୟାଣ ନହିଁ ହୋତା କଲ୍ୟାଣ ହୋତା ହେ ଏହି ରାଜା ରଘୁବନ ସୌଭରୀ ଦେଶ କା ରାଜା କୋ ଚାହେ ତ ଦଣ୍ଡ ଦେ ସକତେ ଥେ ଲେକିନ ଉହେଁ ଉହେଁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିଆ ଆତ୍ମଦତ୍ତ ଗାନ ଦେ କରକେ ଭଗବତ ଦମ ଭେଜ ଦିଆ ନିତ୍ୟାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗାଇ ମା ଧାଇ ମାରନେ କେ ବାବଜୁଦ ଭି ହରିଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କିଆ ଲେକିନ ଏ ବିରଳ ହେ ଇକୋ ଆମେ ଏ ନହିଁ ସମଝ ସକତେ ଏ ବିରଳ ହେ ଇସମେ ଭକ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଭ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଆ ଗିଆ ଇସ ବିଷୟ ମେ ଯେ ମହାଭାଗବତ କା ଚରଣ ମେ ଅଗର ଅପରାଧ ଭି ହୋ ଜାତା ହେ କିସି କିଆ ଓହି ଅପରାଧ ଉସ ମୁକ୍ତି କା କାରଣ ବନତା ହେ ଏ ତିନ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆ ହେ ଉନ୍ହେ ଲେକିନ ଇସମେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦିଆ ହେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେ ଦିଆ ଦିବିଜ କିଆ ଦିବିଜ କିଆ ଚରିତ୍ର ମେ ଜବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜୀ କା ଚରଣ ମେ ଅପରାଧ କିଆ ଥା ତୋ ଦିବିଜ ଭକ୍ତି ସେ ଦିବିଜ କଣ ଥା ରାମ କା ରାମ କା ପାର୍ଷଦ ଥା ଯୋଜନା ରାମଲୀଳା ହେ ଉନ୍ନୁ ପାର୍ଷଦ ତ ଦିବିଜ ବାନ୍ଦର ଲେକିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜୀ କା ଚରଣ ଅପରାଧ କରନେ କା କାରଣ ଉନ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ପଡ଼େ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଇସଲେ ଆମେ ବି ଏ ଜାଣିନା ଚାହିଁ ଆର୍ ସମଝନା ଚାହିଁ ଯେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିସ୍ ଦୁଃଖ କା ଉପଭୋଗ କିଆ ହେ ଉସ୍ ଦୁଃଖ କୁ ଅଗର ଆମେ କୋବି ସୁଖ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋ ଯାଏ ତୋ ଆମେ ଉସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କୁ ଦୁଃଖ ନହିଁ ଦେନା ଚାହିଁ ଅଗର ହାମ କିସି କୁ ଦୁଃଖ ଦେତେ ହେଁ ତୋ ଆମେ ବି ଉସ୍ ଦୁଃଖ କା ଭୋଗ କରନା ପଡ଼ତା ପଡ଼ ସକତା ହେ ଇସଲେ କ୍ୟା କହତେ ହେଁ ଭେଦ ଶରୀର ଦେଖ କେ ଭେଦ ନହିଁ କରନା ଚାହିଁ जिसका जो शरीर जैसे हैं वास्तव में देखा जाए सब शरीर में एक ही वस्तु है जीवात्मा और परमात्मा अगर ये दोनों वस्तु ना हो तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है बच्चा का शरीर से अगर जीवात्मा परमात्मा चला जाए उस बच्चा गोद में रखोगे आप कि दूध पिलाओगे कि माँ उसको दूध पिलाएगा नहीं पिलाएगा तो जीवात्मा और परमात्मा होने के नाते हमारा प्रीति है एक ज्ञान अगर हमारे में आए तो हमारा इधर उधर दृष्टि को हम संकोच कर सकते हैं दृष्टि को हम संकोच कर सकते हैं आराम से कहिए क्या ये भी तो ही शरीर है वो यही शरीर है जीवात्मा परमात्मा है इसलिए कहते हैं जीवे सम्मान करो जानी कृष्ण अधिष्ठान जीव को सम्मान करना है तुमको कृष्ण अधिष्ठान समझ कर उसको प्रणाम करो उसको धन्यवाद करो तो इसमें परमात्मा विराजित तो है यहां तो ना बाधित तुम्हार विषय तरंग इस प्रकार अगर हमारा मनोभाव रहे हम कभी भी संसार से आबद्ध नहीं हो सकता है दूसरा जो भी कुछ व्यक्ति जो भी कोई आता है उनको हमारे जैसे समझना चाहिए अभी हम भी जैसा था अभी शायद ऐसा ही होगा तो हम जैसे मंदिर में आए उसको भी मंदिर में आए हैं बस जो भी कुछ आए हैं उनको हमारे ऊपर व्यवहार अच्छा करना चाहिए उसको अगर हम अच्छा व्यवहार करके वो भी घर जाकर बोला मंदिर गया था ऐसे व्यवहार किया उन्होंने तो मंदिर में उसका अलग क्या बोलते हैं उसका संस्कार होगा उस संस्कार वो क्या करेगा मंदिर में प्रीति करेगा भक्तों में प्रीति करेगा और वो इस प्रीति उनका सुकृत होगा वही सुकृत फल अग्नि डुबोटी बन जाएगा तो हमें भी अपना जीवन को परिचालना करके हमें सोचना चाहिए हमारा रसगुल्ला खाने की इच्छा ज्यादा है हम अगर 10 पर हम बोला हम सीनियर हम 10 खाएंगे आप आया नया उसको एक देंगे नहीं हमारे इस पर लालस है उसको ऐसे लालस हो सकता है तो हमें क्या करना चाहिए भाई तुम आधा खा मैं आधा खाओ कम से कम उसको ऐसे लालस हो सकता है जिस पर हमारा लालसा है ये श्लोक में समझने का तो जब तक दुख को समझ जैसे जजाति महाराज ने क्या कहा उन्होंने लास्ट में कहा दिया पूरा ब्रह्मांड में जितना स्त्री है एक पुरुष के लिए कम है बोलो लास्ट में उन्होंने ही कहा उन्होंने भोग करके देखा ये भोग का लास्ट एम नहीं है भोग करने के लिए पुत्र का जोबन पूछ लिया फिर भी भोग गया जब उनको उनको अरे तब उन्होंने कहा तो जब तक व्यक्ति को अनुभव नहीं होता है इसमें एक श्लोक बहुत सुंदर है दक्ष प्रजापति ने कहा था दक्ष प्रजापति नारद जी को कहा था नारद जी ने क्या कि तो 20,000 को सन्यास बना दिया था, तो 20,000 का सन्यास बना हुआ नारद जी अपना ठाट से आ रहे हैं, ठाट से आ रहे हैं दीक्षक महल में, कोई जाएगा बोलो तो। नारद जी अपना सिर ऊंचा करके दीक्षक को भेंट करने जा रहा है। नारद जी अब क्या बोले नारद जी को, उनको सोचना चाहिए भाई इसका 20,000 का हम सन्यास दे दिया, अब उनका समय अगर खाया तो हमको कितना प्रेम करेगा। वास्तव में दीक्षक प्रजापति उसको ऐसा ही प्रेम किया, लेकिन एक शब्द अच्छा बोला, विषय ये दुख का कारण विषय भोग के बिना नहीं जान सकता है। इस श्लोक का संस्कृत याद नहीं मुझे, विषय जो दुख का कारण है विषय भोग के बिना नहीं जान सकते हैं, दूसरा को उपदेश के द्वारा वो कभी भी अपने आप को सुधार नहीं सकता है। ये दीक्षा प्रजापति इस श्लोक मंडल ने हम जिससे भागवत सीखा था उन्होंने बोला इस मंडल में लगा और इस श्लोक को याद रखो, विषय जो दुख का कारण विषय भोग किया बिना नहीं, तो आपने उनको सब सन्यास दे दिया, संसार क्या बोलते उनको मालूम नहीं है, काल जी में दोबारा संसारी बन सकता है। ये दुख प्रजापति का अच्छा ये था उसने, फिर लास्ट में अभिशाप दिया वो अलग बात है, तो जो भी है दुख भोग किए बिना नहीं समझ सकते हैं। तो एक बार दुख को भोग करना पड़ेगा तो हम लोग दुख भोग करके मंदिर में आए हैं ना, सांसारिक दुख भोग करके तो मंदिर में आया, इसको अस्वीकार कर सकते हैं? हम तो रघुनाथ दास को समय हाय नहीं है बोलो भाई सब कुछ लाते हैं हमारे पास फिर हम भजन करते हैं, ऐसा तो है नहीं है। उन्होंने प्रीति करके भजन करने आया, हम दुख भोग करने के बाद मंदिर में आया, तो फिर भी अगर हम दोबारा दुख में जाना चाहते हैं तो हमारा भजन छोड़ देना चाहिए, आराम से खाए पिया सुते रहे, हमारा कर्तव्य दोबारा दुख में ना जाए, दृढ़ता पूर्वक भजन करो। अब दृढ़ता भजन करने जाओगे तो नियमाग्रह हो जाएगा, भी ख्याल रखना नियमाग्रह में नहीं फंसना चाहिए, कोई भी व्यक्ति नियमाग्रह में फंस जाता है, मंगल आ जाता है, गुरु पूजा आता है, क्लास आता है, सब कुछ आता है, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं होता है, इसको बोलते हैं नियमाग्रह। इस नियम है, नियम में आग्रह है लेकिन प्रीति नहीं है। नियम में आग्रह रूल में बराबर फॉलो करेगा लेकिन प्रीति नहीं है तो नियम आग्रह हो गया ना, उस नियम में अगर प्रीति हो जाए तो नियम आग्रह नहीं होगा, तो प्रीति करना जरूरी है। महाप्रभु जब शंख बाजते थे नीलाचल में तो महाप्रभु के जगन्नाथ के दर्शन करने जाते थे, भाव क्या था, भाव क्या था, विरह भाव था, विरह, रात भर कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, सुबह जाके गोपी कृष्ण दर्शन करेंगे, जाओ जगन्नाथ जी कृष्ण जाके दर्शन करेंगे, राधा रानी भाव, राधा भाव, से गोपी जय गोपी से कृष्ण, अनंत अद्भुत चैतन्य चंद्रेर विहार, अद्भुत शब्द पूरा चैतन्य चरित्र में तीन जगह में है, अद्भुत शब्द अनंत अद्भुत चैतन्य चंद्र विहार, अद्भुत शब्द तीन जगह में दिया हुआ है पूरा चैतन्य चरित्र में, अद्भुत क्या अद्भुत है, जो जो गोपी है वही कृष्ण है, जो अद्भुत है जो गोपी है वही कृष्ण, जो कृष्ण वही गोपी है, ये जो महाप्रभु विचार मतलब लीला का वैशिष्ट है, अनंत अद्भुत चैतन्य चंद्र विचार कौन समझेगा इसको। महाप्रभु क्या सोचते हैं, अभी वही कृष्ण है, वही कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं जा रहे हैं, भाव किधर है, राधा रानी का रात भर कृष्ण विरह होगा, सुबह जाकर कृष्ण दर्शन करेगा, दौड़ के जा रहा है जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, हमें भी मंगल आरती आना है तो इस भाव को लेना पड़ेगा, इस भाव को हृदय में धारण करके मंगल आरती आ जाओ कल्याण हो जाएगा, नहीं तो हाजिरी खाता में पी लिखने से अगर आएंगे तो कल्याण होने वाला नहीं, हमारा को देखा ना हम भी पी है ना इधर, तो पी ही मिलेगा हमको, भजन आसान नहीं है, भजन शिक्षा करना चाहिए, इसलिए दीक्षा गुरु और भजन शिक्षा गुरु अलग होता है, कभी कभी दीक्षा गुरु भी भजन शिक्षा देते हैं, जब देने के लिए समय नहीं होता है तो जो भजन करता है उनसे शिक्षा लेना चाहिए, भजन का परिपाटी को शिक्षा देगा, भजन का सुख को बात को समझाएगा और वो समझ करके वो अपना चरित्र को संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये खाली ज्ञान के द्वारा नहीं होगा, जो भजन शिक्षा देगा उसको भी आचरण करना पड़ेगा, अगर वो आचरण नहीं करता तो भजन क्या वस्तु क्या जानेगा, हरिनाम में जो क्या रस है वो क्या समझेगा। इसलिए कहते हैं जो कांटा जिसको चुभा नहीं है वो कांटा का दर्द क्या समझेगा, बोले तो कांटा चुभना चाहिए नहीं तो जोर से चुभा देना चाहिए फिर मालूम पड़े क्या दर्द है। तो हम लोग को सबका कांटा चुभा हुआ है, हम लोग सब संसार में सुख का दुख भोग जा चुका है, अभी दोबारा कांटा डालने का कोशिश नहीं करना चाहिए। चलो हरे कृष्ण। बहुत कुछ मैं कुछ दूसरा बोलने के लिए आया था, दूसरा हो गया। Thank you.